سورت یوسف، چند باتیں سورت یوسف کی. پہلی بات یہ کہ الحمدللہ سورت یوسف کو بہت دفعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، ہر سال قرآن پاک کے تفسیر کے سیٹ میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کو ہم نے لاہور میں ایک کورس کے اندر پیرنٹنگ کے طور پہ بھی پڑھا تھا. آپ میں سے جس کو بچوں کی تربیت کے لیے کچھ انسٹرکشن چاہیے ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام خاص طور پہ ایک باپ کے ناطے سے وہاں ہمارے سب کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے. آج ہم اس کو جس نظر سے پڑھیں گے وہ ہے امت وسط کے حالات. بہت گہری مماثلت ہے. تھوڑی سی آپ کو پھر ہسٹری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں لے نہیں سکیں گے. تو بنی اسرائیل بیت المقدس میں رہتے تھے، ملک شام ہر نبی کا ملک اور وطن رہا. جیسے آپ سوچئے کہ آپ کا میرا اپنا ہوم لینڈ ہے، اسی کے ساتھ معاملہ تھا. ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ بنی اسرائیل جن کا مدر لینڈ بیت المقدس تھا، وہ مصر میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ جو ہی آپ فرعون اور موسیٰ کا قصہ پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل مصر میں دکھتے ہیں، پیچھے آپ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے. یہ وہ سوال تھا جس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا. تو سورت یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بیت المقدس سے نکل کر یا ملک شام سے نکل کر مصر میں آنے کی ہسٹری بیان کی. ہم اس کو اپنے لیے کس طرح سمجھیں گے، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تاکہ آج ہم اس سورت کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھ سکیں. اور وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف کا دور گزرا. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے، بیت المقدس میں تھے. میں ان کو اپنے لفظوں میں آپ کی پوری کہانی تھوڑی سی سنا کر پھر اس مقام پہ لے چلوں گی جہاں سے قرآن نے شروع کیا، تاکہ آپ بھی تو انجوائے کریں اور دیکھیں کہ آخر اللہ نے اس قصے کو اتنا کیوں الیبوریٹ کیا. تو جتنے بھی نبی تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور سارے، یہ بیت المقدس میں تھے، وہیں رہتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اسی نسل کا ایک حصہ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے دیے. ان 12 بیٹوں میں فرق کس چیز کا تھا؟ مائیں دو تھی، یعنی دو بیویوں سے ہوئے تھے. حضرت یوسف اور بنجامین، جس کو انگلش میں بینجمن کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مقدر بدلنا چاہا. ملک شام اس وقت کا ایک بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا، آج کی زبان میں کمزور غریب ملک تھا، جبکہ مصر ایجپٹ اس دور کی ویسٹرن کنٹری سمجھے، یعنی بہت رقی یافتہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ ایسے حالات سے گزارا کہ جس سے گزرنے کے بعد وہ بیت المقدس یا کنعان کے ایک چھوٹے سے شہر یا گاؤں سے نکال کر مصر، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہاں پہنچا دیا. یہ ایک تبدیلی کا آغاز تھا. جیسے ہم آج امت وسط اور امت مسلمہ کی باتیں کرتے ہیں نا، اصل میں آپ دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک گولڈن چانس تھا. یہ ایسی جیسے آپ میں سے، میرے میں سے کوئی پاکستان یا انڈیا کے کسی گاؤں سے اٹھا کر اس کسی ویسٹرن کنٹری کے بڑے اعلیٰ کسی ملک میں بٹھا دیا جائے، ایک بگ چینج تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حالات بدلنا چاہتے تھے. حضرت یوسف کے ساتھ جو ہے وہ تو ایک الگ ہسٹری ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حالات کے اتار چڑھاؤ سے گزار کر، جو ہم اس صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایسا دور آیا کہ مصر کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے، یعنی منی افیئرز ان کے نام پہ آ گئے. جب وہ ادھر آئے تو کنان میں یا بیت المقدس یا ملک شام میں کہہ لیجیے کہ بگ قحط تھا، اس قحط سے بچاتے ہوئے بھی اور شاہی مہمان کے طور پہ بنی اسرائیل میں سے بہت سارے خاندان مصر میں بھیج دیے گئے. یہ ایک تبدیلی کا سفر تھا، اور آپ سمجھیے کہ اس وقت وہ اس دور کے مسلمان تھے. اللہ نے اس دور کے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی جگہ سے نکال کر ایک بہت بڑی ترقی یافتہ جگہ میں رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ وہاں ان کے ذریعے سے اللہ کا دین پھیلے. اب میں اس کو ذرا آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ لے آؤں. ہم اپنے کسی چھوٹے سے ملک میں تھے، شہر میں تھے، گاؤں میں تھے، جہاں بھی تھے، کسی بھی حالات کے تحت میں اور آپ باہر پہنچ گئے. یا یہ خطاب اصل میں سورت یوسف اس وقت آپ اور میں پڑھیں گے، پیپل لیونگ ان ویسٹ، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے مسائل. جب ہم اپنے ملکوں میں چھوٹی سی جگہوں میں رہتے ہیں تو ہم پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں، سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بہت کھل کے گناہ کے مواقع بھی نہیں ملتے. और हम महफूज होते हैं। जो ही हम वहां से निकाल कर वेस्टर्न कंट्रीज में भेज दिए गए, कोई पढ़ने के लिए आ गया, कोई जॉब के लिए आ गया, किसी को अकेले रहना पड़ा, किसी मर्द को बेचारे को भाई दोस्तों के साथ रहना पड़ा, वहां आकर इम्तिहान शुरू हो जाता है। जब हम किसी वेस्टर्न कंट्री में आते हैं तो हम बाज़ औक़ात फिर उस जगह के रंग ढंग को अपना लेते हैं, और चूंकि मादर पितर आजाद है, अम्मी नहीं घर, अब्बू नहीं रहा घर, तो किसका डर है। यही होता है कि वेस्ट में आके जब मुसलमान बिगड़ने लगते हैं इस ख्याल के तहत, नंबर एक हमें कोई पूछ नहीं रहा, दूसरी बात हम मजबूर है, और वो हराम में पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी जॉब्स उनको ऑफर की जाती हैं जिसमें नाफरमानी है, लेकिन उनके पास और कोई स्किल्स नहीं होती, तो वो वहां आकर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको भेजा था उससे दूर हो जाते। बनी इसराइल हजरत यूसुफ के खानदान के लोग होने की वजह से जब मिस्र में आए, इंतहाई इज्जत उनको मिली, शाही मेहमान बने। कुछ अरसे के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर इंतकाल हो गया। अब क्या हुआ, इनको करना क्या था, ये मिस्र को मुसलमान करते हैं, लेकिन मिस्र को इन्होंने मुसलमान नहीं करना था, वो उमर बिन अलास के हाथों अल्लाह ने मुसलमान करवाया उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द से। अगर बनी इसराइली मिस्र या उस दौर में उस वेस्टर्न कंट्री में जाते और अल्लाह का पैगाम फैला देते तो ये रुतबा ये ऑनर उनको मिलती, लेकिन वही हुआ जो शम्मा से दूरी पे होता है, थोड़ी सी दौर गुजरी तो फिर बिगाड़ आ गया, फिर आपस में लड़े मरे, और फिर वो सारी हिस्ट्री जो आप सूरह बकरा में बनी इसराइल की पढ़ चुके हैं वो इससे आगे है जो मैं अब आपको सुनाना नहीं चाहती। फिर कैसे जो बाबुल शहर में इनको गुलाम बनाया गया, और कैसे बैतुल मकदस की ईंट से ईंट बजाए, आज जो शाही मेहमान बन के मिस्र में भेजे गए थे, बड़े जलील होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये हालात बन गए, और अल्लाह ताला ने इनको फिर धक्के दिलाए। दूरी बतल है मुजिल्ला वल मस्कना। आगे सूरत बनी इसराइल आ रही है 14th पारे के शुरू में, वहां भी थोड़ा सा आपको इससे रिलेट कराऊंगी, क्या पता चला, खुलासे पे आ जाए, हिस्ट्री को छोड़ देते हैं। बनी इसराइल को अल्लाह ने एक बिग कॉज के लिए इजिप्ट में भेजा था, और उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, निकाल दिया, और जिसके नतीजे में फिर उनको कई साल की मार खानी पड़ी। आज उम्मते मुस्लिमा के लिए इस वक्त नुकता है गौर का। हम में से हर एक जिसको अल्लाह ने वैस में रखा है, पहली बात है आप इस निकलने को और इधर पहुंचने को अल्लाह की एक बिग ब्लेसिंग समझे, नंबर एक अपॉर्चुनिटी समझे। किस चीज की अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू डू दावा, अपॉर्चुनिटी टू गिव देम इस्लाम। देखिए जब आप किसी चीज से दूर होते हैं ना तो आपको उससे बहुत बेगानगियत होती है, लेकिन जब एक चीज आपके साथ है, रोज है, इधर उधर मिलते हैं देखते हैं, तो घुलने मिलने से फ्रेंडली हो जाते हैं ना। हम मुसलमान जब तक दूर है गैर मुस्लिमों से, वो हमारे बारे में नहीं जानते, मीडिया में बदनाम करे, मीडिया में कुछ भी करे, वो कहेंगे ये होते ही बुरे लोग हैं। लेकिन अब उनके नेबर में एक घर में मुसलमान आ गया और वो मुसलमान वाकई मुस्लिम है, आते जाते हेलो हाय बाय, फिर करते करते अलैक्स लैक, खाना भेजा, खाना लिया, दिया लिया, और थोड़ी देर बातों में आहिस्ता आहिस्ता जब मैसेजेस पास हुए तो वो एक बेगानगियत खत्म हुई ना। जब बेगानगियत खत्म हुई तो दिस इज द पॉइंट टू डू दावा, बात वाज है। जब मुसलमान इस तरीके से वेस्ट कंट्रीज में रहते हैं जिस तरह के रहने का हक है, तो ये रहना उनके लिए नेमत बन जाता है, मुस्लिम बन के रहते हैं। नंबर एक जमीन अल्लाह की है, जहां भी रहे मुस्लिम बन के रहे, और दूसरी बात है कि किसी के प्रेशर में आने की बजाय आप उसको प्रेशर दें इस्लाम का। तीसरी बात है किसी के रंग में रंगने की बजाय आप उसको अपना रंग दें। जब मुसलमान ये करते रहे, ये 120 के करीब मुल्क बनते गए। आज जितने मुस्लिम मुल्क हैं ये पहले नॉन मुस्लिम मुल्क थे। ये किस तरह से हुए, ये मुस्लिम्स की नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने की वजह से हुए, माइग्रेशंस में। आज हम ये फतवा तो बड़ी आराम से दे देते हैं कि दारुल कुफर में रहना हराम है, वापिस आ जाओ, तुम्हारी रोजी हराम, तुम्हारी रोटी हराम, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या आप मैं दुनिया में इस तरह की दीवारें खींच सकते हैं कि दीवार के इस पार सारे मुस्लिम और उस पर सारे नॉन मुस्लिम। और आप ये जाहरी दीवारें खींच भी लेंगे ना तो मीडिया के जरिए और जहनों के जरिए दीवारें तो हटी हैं। नेट तो आप पाकिस्तान में अगर एक डालते हैं नंबर, तो अमेरिका में आने तक सेम ही नंबर पे चलता है। मेरा एक मुल्क का नेट डला हुआ है, मैं हर मुल्क में जाती हूँ, मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। तो वो बाउंड्रीज तो आज खत्म हो चुकी है। आज करने की जिम्मेदारी, ये सूरत यूसुफ का मैसेज है कि बिगड़ी हुई औलादों की सलाह कर लो। हमारे साथ क्या रोना हुआ, वही रोग हुआ जो हजरत याकूब के साथ हुआ, के बजाय इसके कि वो वहां अपने आप को संवारते सुझाते वो बिगाड़ का शिकार हो गए। आज हम मुसलमान कहते हैं हमारी नस्लें बिगड़ गई, नस्लें बिगड़ रही हैं, वजह क्या है? हम कहते हैं यहाँ हम हराम खाते हैं, वजह क्या है? हम कहते हैं हम यहाँ फलां चीजें पहने ना तो हमारा गुजारा नहीं होता, वजह क्या है? 101 चीजें अपने प्रॉब्लम लिखिए, वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स के प्रॉब्लम रियली हैं, अगर आप दर्द रखते हैं तो हैं, आप वो सारे प्रॉब्लम्स लिख लें, आपको इस सूरत में उसका जवाब मिल जाएगा। और आज भी अगर हम मुसलमान आंखें खोल के जीना सीख लें, अपने दीन से शर्मिंदा होने की बजाय अपने दीन पे फख्र हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि फिर दोबारा चेंज आएगी। सिर्फ एक यूसुफ अभी हम देखेंगे कि इजिप्ट गए थे, ओनली वन यूसुफ जो गुलाम है, जो लॉस्ट चाइल्ड है, जो किडनैप्ड किड है, लेकिन उस बच्चे ने अपने ईमान, इखलास, अपने एहसान, तकवा से इतनी जगह बना ली कि जिस घर में गए इज्जत पे। चार वाक्यात हम पढ़ेंगे सूरत में, जो हिकमत, फहम, फरासत और मामला फहमी की बेहतरीन मिसाल है। यूसुफ की जिंदगी एक सी सॉ लगेगी आपको, मुझे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या तो बहुत ऊपर या फिर बहुत ही नीचे, लेकिन हर हाल में वो मुस्लिम रहे। और अल्लाह ने फिर उनको जो इज्जत दी कि उस गैर मुस्लिम मुल्क के बादशाह ने खुद आपको ऑफर दी कि आप आइए और मेरा मुल्क संभालें। बात बड़ी करने लगी हूं, अल्लाह ताला बस खैर की बना दे। अगर हम मुस्लिम स्किल्ड हो जाएं, अगर हम वो सारी स्किल जो अल्लाह और उसके नबी के जरिए से हमें मिली वो ले लें, आज हम खुद इनवाइटेड पर्सन होंगे कैबिनेट्स में कि आप आइए, आप मनी अफेयर चलाइए, हमें पता है कि इस्लाम का मनी मैटर बहुत अच्छा है। शर्त एक है, हमें खुद तो बताओ। बात वाजे, हमारा हाल यह कि हमें एक अनाड़ी ड्राइवर की तरह एक गाड़ी में बिठा दिया गया और हमें खुद गाड़ी नहीं चलानी आती, तो धक्के देते हैं कभी ओवर स्पीडिंग कभी कम, और लोग बदनाम करते हैं इस्लाम को। छोटी सी उम्र में एक यूसुफ को अल्लाह ने बाप की गोद से निकालकर एक ऐसी बड़ी ताकत के घर में भेज दिया कि अगर यूसुफ की वो ट्रेनिंग ना हुई होती तो वो भी तबाह बर्बाद होते। अब शुरू करते हैं और इसको इंशाल्लाह बीच में जहां जहां होगा, लेकिन रिश्तों को कैसे हैंडल करें, कैसे हम इंसानों के साथ मामला करना सीखें, आपको इस सूरत से मिलेगा। बच्चियां कैसे घरों में जाएं और किस तरह अपनी जगह बनाएं, और जिस माहौल में दिल फेंक औरतें हो, जहां मर्द तो मर्द बच्चे भी अपनी नजरें ना उठा सके, बच्चे वो लफ्ज बोलने लगे जो हम उस उम्र में नहीं बोलते थे, तो वहां फिर अपने ईमान को कैसे सलामत रखना है, इसका इलाज है। इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि हम इसमें से कुछ एंड पे वाकई आज के हालात के लिए पॉइंट्स पिक करके उसको हम करने वाले बन जाए। सारे बेस्ट नहीं छोड़ सकते। अब पता नहीं मेरी इन बातों पे कई लोग क्या फतवे भी दे देंगे कि ये कितनी शद्दोमत से कह रही हैं कि इधर रहना गुनाह नहीं है। मैंने ये कुछ नहीं कहा, मेरा एक एक लफ्ज आप उस लफ्ज पे तोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप मुस्लिम बन के रहते हैं, अल्लाह के दीन पे फख्र है, आप दुनिया की किसी जगह पे रहें पूरे यकीन से रहें, वो आपके रब की है, ये दुनिया किसी और की नहीं है, आपके मेरे रब की है, किसी को हक नहीं है आपको रुकने का। और अगर आपने मुस्लिम बन के नहीं रहना ना, अगर आप इस्लाम पे शर्मिंदा हैं और आप अपने इस्लाम से दूर हैं, तो फिर आप सऊदी अरब जाके देखिए तो वहां भी यही रोग है। कल किसी जगह हम थे तो एक ब्रदर जो मेरे ख्याल के मुताबिक सऊदी हैं, तो उन्होंने माइक पे आके अनाउंस किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टेक केयर करें, वो अपने स्मार्टफोन्स पे मस्जिद में पीछे बैठ के वॉकमैन्स पे कुछ सुन रहे हैं और कुरान तरावी नमाज चल रही है, तो यही हरम की हद में भी आपको मंजर दिखेंगे। तो याद रखिए, जब तक हम नहीं संवरेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे।